नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्री का मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर के वचन की संगति में बढ़ते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों नए नियम की पुस्तक में से गलातियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 3 को समाप्त किया, जहां पर हमने इस बात को देखा कि जो कोई प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वही उसका पुत्र या पुत्री या संतान कहलाता है। जी हाँ, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। क्योंकि जब हम अपनी नजरों को उठा करके देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया है, इस संसार में वे नहीं रहे, लेकिन आपने बड़ी दया के द्वारा ये जीवन दान हमें दिया है। इसलिए नहीं कि हम अच्छे और भले लोग हैं, लेकिन इसलिए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, इस वक्त हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। हमारी विनती है कि आप हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। हम इससे प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं उसे हम समझ सकें, जान सकें और ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से एक एक भाई बहन की रक्षा कीजिए। जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो तनाव में हैं, जो कर्ज से दबे हुए हैं, जो विवाह के लिए अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, या किसी न किसी रूप से तनावग्रस्त हैं, आप प्रत्येक की सहायता कीजिए, अपने वचन से बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रत्येक को आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 से 6 पद तक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना, हाजिरा और सारा की उपमा। हम अध्याय 4 में भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने के विषय चर्चा करते रहेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मसीह में विश्वास के द्वारा एक और बात होती है जो हमें व्यवस्था पालन द्वारा प्राप्त नहीं होती है। विश्वास द्वारा हमें वयस्क पुत्रों का स्थान प्राप्त होता है। विश्वास करके हम शिशु अवस्था में थे और हमें बड़ा होना या बढ़ना आवश्यक था। परमेश्वर हमें वयस्क संतान का स्थान देता है और हमें क्षमता प्रदान करता है जो अन्यथा हमें प्राप्त नहीं थी। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। यहाँ बालक शब्द का मूल अर्थ है वह बच्चा जो अभी बोलना सीख नहीं पाया है। वारिस जब तक बालक है उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं, अर्थात अंतर नहीं। पौलुस के इस उदाहरण को समझने के लिए हमें रोमी संस्कृति पर ध्यान देना होगा। रोमी परिवारों में दास अलग अलग कामों के लिए उत्तरदायी होते थे। एक सामान को संभालता था, दूसरा पशुओं को, तीसरा पुस्तकों को और चौथा बच्चों को। जब बच्चा छोटा होता था तब वह दासों के अधीन रहता था और उन्हीं के बच्चों में खेलता था। उसमें और दासों के बच्चों में कोई भी अंतर नहीं था। हम आगे देखते हैं गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। पिता के ठहराए हुए समय तक, यह समय कौन सा था? जब पुत्र स्वयं सही निर्णय लेने योग्य हो जाता था तब पिता उसे वयस्क का स्थान देता था। जी हाँ, यहाँ ध्यान रखें कि पिता ही निश्चित करता था कि उसका पुत्र अब परिपक्व अवस्था में है या नहीं। उस समय हमारे समाज के समान 18 वर्ष की आयु का नियम नहीं था। उनकी वयस्क होने की आयु 21 वर्ष की थी। कुछ युवक युवतियां 18 वर्ष में ही 21 वर्ष के बराबर परिपक्व हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 65 की आयु में भी परिपक्व नहीं होते। पौलुस के युग में पिता ही निश्चित करता था कि उसकी संतान की परिपक्वता कब है। तब वे पूर्ण विकसित पुत्र का संस्कार करते थे जिसे तोगा विरिलस कहते थे। रोमी परिवार में कुछ ऐसा होता होगा। मान लीजिए कि पिता राजा की सेना में कप्तान है और वह युद्ध में बहुत दूर गया हुआ है, या व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसकी कहीं दूर नियुक्ति की गई है। अब वह वर्षों बाद आता है। जब वह सुबह दाढ़ी बनाने जाता है तो देखता है कि उसके ब्लेड वहां नहीं है। वह चीख पड़ता है, मेरे ब्लेड किसने लिए? स्वामी की आवाज सुनकर सब सेवक भागे चले आते हैं और उसे बताते हैं कि यह उसके बेटे का काम है। वह सोचता है, ओह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। तब वह उसे बुलवाता है, ओह, यह तो बड़ा हो गया है। वह तुगा विरिलिस की तैयारी करता है और सब परिजनों को आमंत्रित करता है। उस दिन वह अपने पुत्र को बागा तोगा पहनाता है। उड़ा पुत्र के दृष्टांत में हमारे प्रभु यीशु के कहने का अर्थ यही था। जब उड़ा पुत्र घर लौटा तब उसके पिता ने उसे एक युवक की नाई नहीं, एक उत्तरदायी वयस्क की नाई स्वागत किया, उसे बागा पहनाया और उसकी उंगली में अंगूठी डाली जिसमें पिता की मुहर थी, अर्थात उसे अपना अधिकार दिया। अब वह बालक स्वयं स्वामी था। अब दासों का उस पर कोई भी अधिकार नहीं था। अब दास उसकी ताड़ना नहीं कर सकते थे। अब वह दासों की ताड़ना करेगा। यही पौलुस के कहने का अर्थ है। गलातियों की पत्री 4:3 में आगे हम पढ़ते हैं, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जी हाँ, संसार की आदि शिक्षा अर्थात व्यवस्था के अधीन थे। पौलुस के कहने का अर्थ है कि व्यवस्था के अधीन इसराइल बालक था। गलातियों के पत्र 4:4 में आगे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब परमेश्वर ने समय निश्चित किया तब पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को भेजा जो व्यवस्था के अधीन एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। मरियम एक यहूदी नारी थी। किसी स्त्री ने कहा कि यीशु की कोई जाति नहीं थी, वह मूर्ख है। उससे अधिक तो वह सामरी स्त्री थी जिससे यीशु की भेंट कुएं पर हुई थी, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:9 में पाते हैं, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यदि आपको बुरा न लगे तो मैं अपने समकालीनों से अधिक उस सामरी स्त्री की बात मानूंगा, क्योंकि मेरे समकालीन विचारक यीशु को यहूदी नहीं मानते हैं। यीशु पूर्ण मानव था, वह देहधारी परमेश्वर था। आज इस तथ्य पर प्रश्न उठाया जाता है, परंतु हमारा एकमात्र ऐतिहासिक बात है कि यीशु वही है जिसको कलीसिया के प्राचीनतम विश्वास वचनों में मनुष्यों में पूर्ण मनुष्य और परमेश्वर का पूर्ण परमेश्वर कहा गया है। यह वचन सही है क्योंकि परमेश्वर का वचन ठीक यही सिखाता है। अपने पुत्र को भेजने में परमेश्वर का क्या उद्देश्य था? हम गलातियों के पत्र 4:5 में पढ़ते हैं, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। ध्यान दीजिए, अपना पुत्र भेजने में परमेश्वर के दो उद्देश्य थे। पहला, व्यवस्था के अधीन अपने संतान को मुक्त करवाए। वे व्यवस्था के अधीनस्थ संतान थे। व्यवस्था ने किसी को परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाया। और दूसरी बात है कि वे पुत्र हो अर्थात ले पालक पुत्र। यहाँ ले पालक अर्थात पुत्र गोद लेने का अर्थ आज के संदर्भ में नहीं है। आज संतानहीन दंपति अनाथालय में जाकर एक मन भावन बच्चा वैधानिक रीति पर गोद ले लेते हैं, परंतु पौलुस के युग में रोमी संस्कृति में अपना ही पुत्र तोगा विरिलिस रीति से अपनाया जाता था। यूनानी भाषा के इस लेपालक शब्द का अर्थ है पुत्र की स्थापना करना। एक विश्वासी परमेश्वर के परिवार में एक वयस्क के रूप में स्थापित किया जाता है जो परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करने के योग्य होता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2:9-10 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन का सत्य केवल पवित्र आत्मा ही समझा सकता है। जब तक वह न समझाए मनुष्य उसे अंतर्ग्रहण नहीं कर सकता। केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन का अर्थ समझा सकता है। जी हाँ, आज अनेक मनुष्यों में यही अंतर है। मनुष्य अपनी तीक्ष्ण बुद्धि उपयोग करके इतिहास, पुरातत्व ज्ञान और भाषा सीख सकता है। वह इब्रानी और यूनानी भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है, परंतु वचन का सही अर्थ नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वचन का शिक्षक केवल पवित्र आत्मा ही है। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। आप मसीह यीशु के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल पवित्र आत्मा ही उसे आप पर प्रकट कर सकता है। एक परिपक्व विश्वासी भी जो वर्षों से वचन का अध्ययन कर रहा है, मसीह में नवजात शिशु की नाई बाइबल अध्ययन में असहाय है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही उन्हें सिखाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और इस अनुभव से ही सत्य को समझा जा सकता है। मेरे एक मित्र हैं, जब वो स्कूल जाना आरंभ किए तब वो अपनी कक्षा में सबसे छोटे थे, परंतु जब उनके पिता की देहांत हो गई तो उन्हें 3-4 वर्ष अपनी उम्र को कम करना पड़ा, जिसके कारण उसकी पढ़ाई अधूरी हो गई। सेवा के प्रशिक्षण हेतु उन्हें अच्छा अध्ययन प्राप्त करना था, अतः वह पुनः स्कूल लौटे और जब वह अपनी कक्षा में गए तो वह सबसे बड़े थे। मेरे मित्रों, सेमिनार में प्रवेश करने के बाद उसे बोध हुआ कि वह बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे बाइबल की पुस्तकों के नाम भी नहीं आते थे। यह मेरे साथ भी था, क्योंकि मैंने भी अपने घर में न तो बाइबल देखी थी और न ही कभी प्रार्थना सुनी थी। मुझसे अधिक वचन का अज्ञानी कोई नहीं था। मुझे प्रार्थना भी नहीं आती थी। मुझे बाइबल की पुस्तकों और अन्य आधारभूत बातों को याद करने में बहुत समय लगाना पड़ता था। इस कारण मुझ में हीन भावना उत्पन्न हो गई। जब मैंने प्रचार करना आरंभ किया तो श्रोताओं में सफेद बालों वालों को देखकर मैं सोचता था कि वे तो बाइबल मुझसे अधिक जानते होंगे और मेरा विचार और मेरे प्रचार तो उनके लिए बच्चों के जैसा होगा। परंतु मैंने अपनी आंखें खुली रखी और अंततः यह देखा कि सफेद बाल वालों में अनेक जन अभी भी मसीह में शिशु ही हैं, बच्चे हैं, दूध पीने वाले हैं। उनका विकास कभी नहीं हुआ था। एक महान सत्य जिसका मुझे उस समय बोध हुआ वह था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ युवा विश्वासी को भी उतनी ही वचन की समझ प्रदान कर सकता है जितनी वह एक परिपक्व विश्वासी को प्रदान करता है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक हो तो हम दोनों ही वचन को समझ सकते हैं। यह मेरे लिए एक नया सत्य था और वह मेरे लिए सेवा के आरंभ में बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण था। जिन वचनों को मैं नहीं समझ पाता, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसे समझ रहा था। मेरे मित्रों, यदि आप नए विश्वासी हैं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है कि वह आपको भी सिखाएगा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो वह आपको एक परिपक्व पुत्र के स्थान पर ले आया है, और इससे अधिक उत्तम बात दूसरी कोई भी नहीं। जी हाँ, यह मेरा युवावस्था का प्रोत्साहन था और आज भी मेरा प्रोत्साहन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको पूर्ण सत्य में ले चलेगा। यदि आप जानना चाहें और उसे अपना शिक्षक बनाएं, तब अब आती है तीसरी बात जो मसीह में विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जिसे व्यवस्था नहीं कर पाई, परमेश्वर के पुत्रों का अनुभव। मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ध्यान दीजिए, तुम जो पुत्र हो, यह एक गहन बात है, गंभीर बात है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और आगे रोमियो की पत्री 8:4-14 में वह कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। शरीर जयवंत हो सकता है परंतु आपको आनंद नहीं दे पाएगा, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है रोमियो की पत्री 8:15-16 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मेरे मित्रों, यह गद्यांश गलातियों की पत्री के समानंत ही है। आप इसे पूरा पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा। बाइबल के अनुवादकों ने अपार श्रद्धा के कारण अब्बा शब्द का अनुवाद नहीं किया, जिसका अर्थ है आदरणीय पिताजी, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत स्वर्गीय पिता है, परंतु मैं उसे पिताजी कहने में संकोच करता हूँ, कारण कि कई बार हम इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और हम उसे कहने में पिता या अब्बा कहने में संकोच करते हैं। मेरे प्रिय मित्र, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि हम उसके लेपालक पुत्र हैं। उसने मुझे और आपको अपना पुत्र बना लिया है और वह चाहता है कि हम उसे आजादी के साथ अब्बा या पिता कहकर के पुकारें। आज मुझे और आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आपका पिता कौन है। मैं यहाँ पर इस संसार के पिता के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस स्वर्गीय पिता जो हमारा परमेश्वर है उसके बारे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसके संतान हैं। जब हम यह कहते हैं कि हम उसके संतान हैं, तो निश्चय ही वह हमारा पिता है और तब हम उसे अब्बा या पिता कहकर के पुकारते हैं, जब हम उसे अपना पिता मानते हैं। और जब हम उसे पिता मानते हैं तो यह निश्चय है कि वह हमारे जीवन का संचालन करेगा। मेरे मित्र, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने उसे अपना पिता मानते हैं। यदि आज तक आपने इस सत्यता को नहीं जाना है कि आपका वास्तविक पिता या परमेश्वर कौन है, तो आज आप अवश्य ही कुछ क्षण रुककर बैठकर सोचें, विचार करें कि आपका सच्चा पिता परमेश्वर कौन है। जी हाँ, इस संसार में लोग किसी को कुछ भी कह दें, आप उस पर ध्यान ना दें। आप विचार करें कि आप किसके संतान हैं। यदि आज की रात आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप परमेश्वर के पास जाएंगे या शैतान के पास, उस नरक में जहाँ पर आग और गंधक की भट्ठे हैं? क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? आज निर्णय आपको लेना है। यदि आज तक आपने यह निर्णय नहीं लिया है तो आज आपके पास समय है कि आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए ले लीजिए, क्योंकि हम सब मनुष्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी और उसके बाद हमारा न्याय किया जाएगा और तब हम स्वर्ग या नरक में होंगे। आपको पता है कि आपका जीवन क्या है, आपको पता है कि आप एक पापी हैं, आपको पता है कि यदि आज की रात आप मर जाएं तो आप नरक के भागीदार होंगे, परंतु एक समय एक पल आपको प्रभु में ला सकता है। जी हाँ, सिर्फ आप अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लीजिए, उससे कहिए कि प्रभु मैंने ये पाप किए हैं, मेरे जीवन से जानते हुए और अनजाने में मैंने ये गलतियां की है। आप उसे स्वीकार कीजिए और ये कहिए कि प्रभु आपने मेरे पापों को, मेरे सजा को अपने ऊपर ले लिया, आज मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे अपने जीवन के लिए, प्रभु यीशु के सामने आप माफी मांगेंगे, तो निश्चय जानिए कि हमारा प्रभु जो सारे मानव जाति से प्रेम करता है, वह आपसे भी प्रेम करता है, वह आपकी चिंता करता है, वह आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। क्या आप इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं? मेरे जवान भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे प्रिय दोस्त, आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसमें अनंत जीवन, शांति और आराम को प्राप्त करें। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। हमारे जितने भाई बहन इस समय अपने जीवन में एक निर्णय ले रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आपको ग्रहण कर सके। उनके हर एक पाप अपराधों को आप क्षमा करें, अपनी शांति और आनंद दें, ताकि आज के बाद वे उस जीवन को न जिए जो जी रहे हैं, परंतु एक नई रीति से आप में, प्रभु यीशु में होकर जीवन जी सकें। आप प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और सबकी सहायता करने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अपनी मर्जी पर मैं चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को